नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ दी अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारता के एपिसोड 24 में, एकलव्य दी बर्थ और डेथ ऑफ अ स्टूडेंट। हमारे आज के एपिसोड के किरदार हैं एकलव्य। अब एकलव्य के बारे में लगभग सभी जानते हैं उस फेमस इंसिडेंट के बारे में कि कैसे उन्होंने गुरु के कहने पे अंगूठा काट के दे दिया था, और इसी के लिए वो आज भी एजुकेशन के सेक्टर में या स्टूडेंट्स में एज ए एग्जाम्पल उन्हें देखा जाता है। बट उस इंसिडेंट के अलावा एकलव्य कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था या उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या उन्हें कोई वरदान मिला हुआ था, ये सारी बातें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा देवश्रवा के यहाँ पे, जो रिश्ते में वासुदेव के भाई लगते हैं। अब राजा देवश्रवा के यहाँ पे बेटा पैदा होता है, लेकिन उस टाइम पे जितने भी ऋषि मुनि लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये बेटा का आपका जो भी है वो भविष्यवाणी अच्छा नहीं रहता है। वो कहते हैं कि ये बाद में जाके अधर्मी बनेगा या फिर अधर्म को सपोर्ट करेगा, इसलिए आपका इसका त्याग देना ही अच्छा है। तो राजा देवश्रवा क्या करते हैं कि उस बच्चे को जंगल में छोड़ देते हैं। अब जंगल में उस टाइम पे भील प्रजाति के लोग रहते थे, जो कबीले थे। उनका जो राजा था उनका नाम था हिरण्यधनु। अब ये बच्चा उनको मिलता है और यही बच्चा बाद में जाके एकलव्य कहलाता है। अब चूंकि देवश्रवा जो हैं वो वासुदेव के भाई हैं और वासुदेव के जो बेटे हैं वो हैं श्री कृष्ण, तो इस नाते एकलव्य और श्री कृष्ण दोनों आपस में चचेरे भाई लगते हैं। अब कहीं पे ये कहा गया है कि देवश्रवा जानबूझ के बच्चे को जंगल में त्याग देते हैं, और कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि वो बच्चा उनसे जंगल में गुम हो जाता है। तो खैर, तो कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये बच्चा उस भील जाति के कबीले में पहुँच जाता है और वहाँ के जो राजा हैं हिरण्यधनु वो उसे गोद ले लेते हैं और वो फिर उसको पाल पोस के फिर बड़ा करने लगते हैं। अच्छा, अब एकलव्य जो नाम है वो बचपन से उनका नाम नहीं था, उनको ये नाम एक गुरु ने दिया था। बचपन में एकलव्य का नाम था अभिघुम्र और लोग उन्हें प्यार से अभय अभय बुलाया करते थे। लेकिन ये जो गुरु हैं उन्होंने जब अभय को प्रैक्टिस करते हुए देखा तो उनका जितना कंसंट्रेशन था या फिर जिस इंटेंसिटी के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपने वेपन्स का, तो ये देखते हुए, उस नेचर को देखते हुए अभय का नाम उन्होंने एकलव्य रखा। अब एकलव्य को भी बचपन से ही शौक था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बने, और वो इसके लिए हमेशा अपने पिता से या अपने गुरु से अपने माँ से हमेशा ये पूछता भी रहता था। अब उस टाइम पे गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो सबसे बड़े गुरु माने जाते थे किसी भी वेपनरी के लिए और ख़ास करके धनुष विद्या के लिए। तो ये बात इसके पिता को भी पता था, एकलव्य के जो पिता थे हिरण्यधनु उनको भी पता था। तो वो अपने बेटे को लेके वो जाते हैं उनके आश्रम में हस्तिनापुर, वहाँ पहुँचते हैं गुरुकुल में, और वहाँ पे एकलव्य जो हैं वो फिर अप्रोच करते हैं गुरु द्रोणाचार्य को कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। लेकिन उस टाइम पे कंडीशन ये था कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज के बच्चों को सिखाया करते थे या तो फिर ब्राह्मण को सिखाया करते थे, और इसीलिए वो फिर इसको मना कर देते हैं, जो एकलव्य हैं उसको मना कर देते हैं कि मैं नहीं सिखा सकता। तो अब एक जगह मेंशन है कि वहाँ पर ना सुनने के बाद एकलव्य वहाँ से वापस लौट जाता है और वो जंगल में, पास के जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के वो खुद से वहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाता है। एक तो ये थियरी है। दूसरी कहानी एक ये भी है कि बहुत कोई कहते हैं कि जब ये अप्रोच करता है गुरु द्रोणाचार्य को, उनको बार बार रिक्वेस्ट करता है कि सीखने का मौका दे, सीखने का मौका दे, तो गुरु द्रोणाचार्य ये देख के अच्छा लगता है कि एज ए शिष्य उसको सीखने की चाहत बहुत ज़्यादा है अपने अंदर, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ तुम एक काम कर सकते हो, तुम गुरुकुल में रह सकते हो और यहाँ पर रह के तुम काम कर सकते हो। तो अब एकलव्य का वहाँ पे काम सिर्फ यही था कि जितने भी रॉयल फैमिलीज के बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे, जो चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, तो वो जब तीर चलाने का जब वो लोग प्रैक्टिस करते थे, तो तीर चलाने के बाद वो टारगेट पे लगे नहीं लगे तो तीर वो लोग ग्राउंड पे ही छोड़ के चले जाते थे। तो एकलव्य का काम सिर्फ इतना था कि वो जाता और वो तीर को सबको कलेक्ट करके सबके इंडिविजुअल तरकश में रख देता था। तरकश मतलब जिसमें तीर को हम लोग रखते हैं, और दूसरे दिन फिर प्रैक्टिस के लिए पांडव आते थे। तो ये काम था। लेकिन एकलव्य के अंदर सीखने की चाहत इतनी ज़्यादा, इतनी स्ट्रांग थी कि वो मतलब गुरु द्रोणाचार्य जब सिखाते थे पांडवों को या फिर कौरवों को, ये छुप छुप के ये देखता था, ये सुनता था कि वो क्या बता रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं। और वो सीख के जब भी इसको टाइम मिलता था ये खुद से जाके प्रैक्टिस करता था, कभी पहले चला जाए या फिर अगर पांडव और कौरव प्रैक्टिस टाइम के पहले ही अपना छोड़ के सब चले गए तो ये उस टाइम पे प्रैक्टिस करता था। अब यूं ही एक दिन क्या होता है कि ये प्रैक्टिस कर रहा था और इसी टाइम पे दुर्योधन इसको देख लेता है प्रैक्टिस करते हुए। अब दुर्योधन देखता है प्रैक्टिस करते हुए, वो तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन दुर्योधन देखता है कि ये इतने सटीक तरीके से ये चला रहा है, मतलब गुरु द्रोणाचार्य जो इन लोगों को सामने रह के सिखाते हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं, ये सेम उसी तरीके का रिजल्ट ये दूर से दे रहा है, मतलब ये इतना अच्छा प्रैक्टिस करता था। तो दुर्योधन जाता है, बता देता है गुरु द्रोणाचार्य को कि ऐसा ऐसा है, वो प्रैक्टिस करता है और वो हमसे भी अच्छा करता है, आपने वचन दिया था कि हम लोग बड़े वॉरियर होंगे, बट वो तो बिना सीखे ही इतना अच्छा कर रहा है। अब जब गुरु द्रोणाचार्य को ये बात पता चलता है तो वो फिर गुस्सा होके उसको बोलते हैं कि मैंने तुम्हें तो अपना शिष्य माना नहीं था, तो ये गलत है कि तुम चोरी छुपे सीख रहे हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ। अब एकलव्य वहाँ से फिर चला जाता है और वो वापस घर नहीं जाता है, वो वहाँ के पास के जंगल में जाता है और जंगल में जाके वहाँ के जो कबीले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि एक जगह उसको दे दे प्रैक्टिस करने के लिए। और चूंकि भील जाति के जो कबीले के जो राजा हैं हिरण्यधन्यु, उनका नाम बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए, और ये उनके बेटे माने जाते थे, इसीलिए बाकी कबीले की तरफ से इन्हें भी कोई परेशानी नहीं होती। तो ये वहाँ पे एज यूजुअल अपना गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बना के ये अपना प्रैक्टिस करने लग जाता है सुबह शाम। अब धीरे 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 समय पार होता है, धीरे धीरे ये लोग शुरू में तो बच्चे रहते हैं, अब सब बड़े हो जाते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के साथ में ऐसे ही जंगल पे वो लोग कुछ और प्रैक्टिस के लिए या फिर किसी और कारण के से जाते हैं, और इनके साथ में रहता है इनका कुत्ता। अब ये कुत्ता इनके साथ जाता है, थोड़ी देर इनके साथ रहता है, फिर वापस जंगल में भौंकते हुए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वही कुत्ता बिना आवाज़ निकाले चुपचाप इनके पास आता है। तो जब कुत्ता जब वापस आता है तब ये लोग देखते हैं कि भाई कुत्ते के मुंह में किसी ने ढेर सारा तीर मार दिया है। तीर मारा है वो तो अलग है, लेकिन तीर को इस तरीके से चलाया है जिससे कि कुत्ते को एक भी नुकसान नहीं पहुंचा है, एक भी तीर से उसको चोट नहीं पहुंची है। तो उसके जबड़े को सिर्फ खुला रखने के हिसाब से तीर चलाया गया था, मतलब ऐसा तीर चलाया कि दो दांत के बीच में घुस गया है, जिससे कि वो आवाज़ नहीं कर पाए, भौंक नहीं पाए। अब ये देख के तो एकदम ये लोग भी चौंक जाते हैं कि भाई इतना बड़ा तीरंदाज कौन है जो इसने सटीक तरीके से तीर चलाया है। तो अब अर्जुन देखता है गुरु द्रोणाचार्य की ओर कि ये कौन है, ये तो आपने मुझे सिखाया ही नहीं है, ये कौन इस तरह से तीर चला रहा है। तो ये लोग फिर कुत्ते को फॉलो करके पहुंचते हैं वहाँ पे एकलव्य के पास। अब चूंकि समय बहुत पार हो चुका होता है इसलिए शायद से गुरु द्रोणाचार्य एक बार में नहीं पहचानते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं उससे कि तुम कौन हो और तुम्हारा गुरु कौन है। तब एकलव्य अपना मन बताता है कि मेरा नाम ये है और मेरे गुरु आप ही हैं, और फिर दिखाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का वहाँ पे मूर्ति बना हुआ है। तो अब ये देख के गुरु द्रोणाचार्य को थोड़ा टेंशन हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने जो भीष्म पितामह हैं उनको प्रॉमिस किया था कि जितने भी युवराज हैं उनको सबसे बड़े योद्धा और वॉरियर बनाएंगे हथियार में, और दूसरी तरफ उन्होंने अर्जुन को प्रॉमिस किया था कि उसको दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। तो एकलव्य को सामने देख के उनको ये अपने जो वचन दिया था उस पे थोड़ा सा उनको डाउट होने लग जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है द्रोणाचार्य और एकलव्य के बीच में, जहाँ पे वो पूछते हैं कि नाम और गुरु का जब पूछ लेते हैं सवाल, उसके बाद उससे पूछते हैं कि ये जो तुम सीख रहे हो, इतना बड़ा बनोगे, तुम किसकी तरफ से लड़ना चाहते हो। तो वो जवाब में कहता है कि राजा जरासंध की तरफ से। तो ये पूछते हैं कि ये जानते हुए कि वो अधर्मी है और वो लोगों की हत्या करता है, तो ये कहता है कि हाँ, ये जानते हुए भी मैं उन्हीं के तरफ से लड़ूंगा। क्योंकि एक हिस्ट्री रहा है, जो भील जाति के जो लोग हैं वो लोग जरासंध के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, और कहते हैं कि इनके जो फादर थे, एकलव्य के जो फादर थे, भील जाति के जो हेड थे, वो कमांडर भी थे जरासंध के। तो इसीलिए ये जरासंध की तरफ से लड़ने की बात करते हैं। तो फिर द्रोणाचार्य फिर वहाँ पे कुछ थोड़ा सा सोचते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमने तो मेरे से ले लिया है, जो भी सीखना था सीख लिया है, तो अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो कहता है कि ठीक है, मांगिए, क्या चाहिए आपको। तब जाके द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुम मुझे अपना दायां हाथ का अंगूठा दे दो। और एकलव्य बिना एक सेकंड भी सोचे तुरंत काट के अपना अंगूठा दे देता है। तो ये इंसिडेंट वहाँ पे ऐसे होता है। अब ये बहुत जगह कहा है कि जब ये उससे मांग लेते हैं और ये वो काट के तुरंत दे देता है, तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि वो इशारों में उसको दिखा देते हैं कि तीर चलाने के लिए आप अपना फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों फिंगर को भी यूज़ करके आप तीर चला सकते हैं, और ये इशारे में बताते हैं। अब ये थोड़ा सा डिबेट वाली चीज़ है, कहीं पे ये है कहीं पे नहीं है, या फिर ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो खैर, तो और उसके बाद वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि अंगूठा कटने के बाद एकलव्य फिर अपने जो फोर फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है वो उससे प्रैक्टिस करना चालू होता है। अब जिसे आज के डेट में, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि आज के डेट में जिसे ये मॉडर्न आर्चरी में देखा गया है, अगर आप ओलंपिक्स देखेंगे या फिर आज के डेट की जो आर्चरी की प्रतियोगिता होती है उसमें देखेंगे, तो उसमें अंगूठा बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, शायद से रेयरली यूज़ होता है। तो कहते हैं कि ये जो फॉर्म है आर्चरी का जो आजकल यूज़ होता है, इसके जन्मदाता जो हैं वो एकलव्य ही है। तो ये थी कहानी कि किस तरह से अंगूठा मांगा और उन्होंने किस तरीके से बिना सोचे समझे, बिना झिझक के अपना अंगूठा काट के दे दिया। अच्छा दोस्तों, इस इंसिडेंट के अलावा एकलव्य से रिलेटेड मैं एक दो बातें और भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब एकलव्य ने अपने अंगूठे का बलिदान कर दिया, इस बात से श्री कृष्ण इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि अगला जन्म उसे ऐसा मिलेगा जिससे कि वो द्रोणाचार्य को मार सकेगा, मतलब उसका बदला ले पाएगा। और कहते हैं कि जो दृष्टद्युम्न है, जो राजा द्रुपद के घर में पैदा हुआ था, वो एकलव्य का दूसरा जन्म था। दृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई भी लगते हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि महाभारत की लड़ाई के समय एकलव्य कहाँ थे, वो पार्टिसिपेट किए या नहीं किए। तो दोस्तों, महाभारत की लड़ाई के पहले ही एकलव्य मारे गए थे और उनको श्री कृष्ण ने ही मारा था। जैसा कि मैंने कहा कि भील राज जो था, जो कबीला था, वो जरासंध के सपोर्टर थे और जरासंध मथुरा पे अटैक करते थे कृष्ण के नगरी पे, जिसमें कि ये कमांडर था एकलव्य जो था, वो वहाँ के एक टुकड़ी का ये भी कमांडर था और वो भी उस अटैक में शामिल रहता था। तो कई जगह है कि उस लड़ाई के दौरान श्री कृष्ण एकलव्य को मार देते हैं, और कहीं पे है कि दुर्योधन के कहने पे एक बार एकलव्य कृष्ण के बेटे को मारने की साजिश करते हैं, मतलब कृष्ण के बेटे हैं सांबा, तो उसको मारने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान फिर श्री कृष्ण एकलव्य को कहते हैं कि पत्थर से मार देते हैं, मतलब उसका सिर के दो टुकड़े कर देते हैं पत्थर से मार के। तो ये तो हो गई कहानी कि महाभारत में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और अगर किया था तो शायद धृष्टद्युम्न के रूप में किया था जो कि पांडवों की तरफ से थे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी एकलव्य से रिलेटेड, उनके जीवन के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में। अब चाहे बातें जो भी हो, इंसिडेंट्स जो भी रहे हो, एकलव्य हमें एक बात ज़रूर सिखाते हैं कि सेल्फ स्टडी कितना इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं तो जहाँ एक तरफ वो अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एकलव्य अकेले में सेल्फ ट्रेनिंग करते थे, और उसी सेल्फ ट्रेनिंग के बदौलत वो अर्जुन के बराबरी और अर्जुन से अच्छे हो सकते थे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी एकलव्य से रिलेटेड, उनके जीवन के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में। अब चाहे बातें जो भी हो, इंसिडेंट्स जो भी रहे हो, लेकिन एकलव्य हमें सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से सिखाते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अकेले में एकलव्य सेल्फ ट्रेनिंग करके वो इतने बेहतरीन वो तीरंदाज बनते हैं। तो सेल्फ स्टडी हमेशा काम आता है, चाहे आप किसी भी लाइफ के स्टेज में रहें, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, सेल्फ स्टडी हमेशा काम आता है। और इसी कारण आज भी स्टूडेंट्स में एकलव्य को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं कि एकलव्य का एक मंदिर भी है। जी हाँ, और ये वर्ल्ड का सिर्फ एक इकलौता मंदिर है जो एकलव्य के नाम पे है, और कहते हैं कि ये ठीक उसी जगह बनाई गई है जहाँ पे कि इन्होंने अपना अंगूठा काटा था और इनका अंगूठा कट के गिरा था। और अभी ये है हरियाणा में, वहाँ पे खंडसा नाम का एक गांव है जहाँ पे ये मंदिर स्थित है। अगर आप आसपास हों या फिर कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मंदिर है। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों इस कठिन दौर में इंसानियत को जगाए रखें और जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करते रहें। हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए। दोस्तों अब आप कुछ सुनाओ यार के एपिसोड्स बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ कुकू FM पे भी सुन सकते हैं और अपने अपने सुझाव वहाँ मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ सुनाओ यार के फेसबुक पेज के ज़रिए या यूट्यूब चैनल के ज़रिए या इनफैक्ट इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप मुझे अपने सुझाव को भेज सकते हैं। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विथ अमित रवानी।